अब आप देखिए कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि लिकुल इमरे मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, आयत नंबर 11 के दरमियान में फरमाया कि हर शख्स के लिए, इमरा तो उन औरत को कहते हैं और जो है वो मुअन्नस के लिए इमरातुन है, तो मर्द के लिए इमरेन, तो हर शख्स के लिए, इसे मर्द और औरत दोनों मुराद हैं, हर शख्स के लिए, मिनहुम इनमें से, इनमें से किन में से, ये जो उसबा था, ये जो एक टोला था जिन्होंने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा पर इल्जाम लगाया था, तो इनमें से मक्तसबा जितना हिस्सा कमाया, मिनल इस्मी गुनाह का, तो इन इस टोले में से, इस ग्रुप में से जिसने जो है वो जितना हिस्सा कमाया उसने उतने ही गुनाह का बोझ अपने ऊपर लिया, उसने उतना ही गुनाह समेटा। और मैंने ये बात बताई थी कि कसब जो है ये कमाई के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर एक कसबा आ जाए तो ये ज्यादातर गुनाह समेटने के लिए आता है। तो मक्तसबा जिसने समेटा गुनाह, मिनल इस्मी गुनाह में से, तो उसने उतना ही जो है वो जिम्मेदारी का हिस्सा अपने सर ले लिया। वल्लजी तवल्ला, और वो शख्स जिसने बड़ा बोझ उठाया, तवल्ला जैसे वली होता है ना, वली कौन होता है, वो भी एक जिम्मेदार होता है, बोझ उठाता है, और तवल्ला जिसने बोझ उठाया, किबराहु वाक्या इफ का बड़ा हिस्सा, मिनहुम इनमें से, तो इन लोगों में से जिसने वाकया इफ का बड़ा हिस्सा लिया, लहू अजाबुन अजीम, तो उसके लिए बड़ा अजाब है। तो वाकया इफ का बड़ा हिस्सा अब्दुल्ला बिन उबई ने लिया, जो इस इल्जाम का असल मुसन्निफ और फितने का असल बानी था। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो इस ग्रोह का, इस टोले का जो है वो असल जिम्मेदार है वाकया इफ का। और आप देखें कि जैसे मसल्स जो हैं, इंसान के पट्टे जो हैं वो मजबूती का जरिया बनते हैं, हड्डियों को जो है वो उसके ऊपर गोश चढ़ाते हैं और उनको मजबूत रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, बिल्कुल उसबा एक ऐसे ग्रोह और जमात को कहते हैं कि जिसके अफराद एक दूसरे के लिए तकवियत का और असबियत का बायस बनते हैं, एक दूसरे के लिए मजबूती का बायस बनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई के लिए, क्योंकि वो असल जिम्मेदार था इसका, उसने बात जो थी वो शुरू की थी, उसने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा पर इल्जाम लगाया था, और फिर बाद में साथ कुछ लोग जो थे उसके शामिल हो गए, तो फरमाया कि उसके पास इसकी बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए तो अजाब अजीम है। इससे क्या बात पता चलती है कि इंसान अपनी जबान से जो अल्फाज निकालता है, उसकी जबान जो बातें बखेरती है, और आमतौर पर जबान क्या करती है कि इधर से बंदा कुछ सुनता है तो दूसरी तरफ फौरन जो है वो बगैर सोचे जो है वो इंसान कहता चला जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसके लिए जो है ना वो बड़ा अजाब है, अजाब अजीम है। और एक बात याद रखें कि जब इंसान सुनी सुनाई बात को आगे करता चला जाता है, उसकी तहकीक नहीं करता, तो ये बात जो है ये अल्लाह को सख्त नापसंद है कि बगैर सुने प्रोपेगंडा करना, यानी जो ही सुना बगैर तहकीक के प्रोपेगंडा करना। तो यहां पे भी ये कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला बिन उबई के लिए जो है वो बड़ा अजाब है, अजाबुन अजीम। तो बड़े अजाब से मुराद क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो मुखलिस सहाबी थे उन्हें जो है वो, उन्हें तो सजा दी गई, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो है उसको तो सजा भी नहीं दी गई। तो यहां पे तो कुरान तो ये कह रहा है कि उसके लिए जो है वो बड़ा अजाब है, तो इसका क्या मतलब है? तो अब्दुल्ला बिन उबई, जैद बिन रिफा जो गालबन यहूदी मुनाफी का बेटा था, तो ये दो लोग जो थे आप मुनाफिकीन में से कह सकते हैं, और मिस्ता बिन ओसासा, हसान बिन साबित, हमना बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु, ये बाकी तीन मोमिन थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जब जो है वो झूठा इल्जाम लगाने वालों के लिए जो है वो सजा का जिक्र आया, तो इन जो तीन हैं इनको तो सजा दी गई, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई को जो है वो छोड़ दिया गया, उसको नहीं सजा दी गई। क्यों? बड़े अजाब से मुराद जो है वो सजा है जो कि कयामत के दिन जो है वो उसको मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि उसके लिए तो अजाबे अजीम है, तो उसके लिए वो बड़ा अजाब है जो उसे कयामत के दिन जो है वो मिलेगा। इससे क्या बात हमारे सामने आती है? इससे ये बात पता चलती है कि जो शख्स किसी भी बुराई में जिस दर्जे का जो है वो हिस्सा लेता है, वो उस दर्जे की सजा जो है वो जरूर भुगतेगा। और अगर कोई शख्स जो है वो दुनिया में जो है वो उसको सजा नहीं मिलती, तो दुनिया में अगर वो बच भी गया लेकिन आखिरत में वो बच नहीं सकता। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो इस फितने का असल बानी था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उसके लिए आखिरत में एक अजाबे अजीम है, बड़ा अजाब है। फिर अगली आयत तो बहुत ही जो है वो गौर करने वाली है, बहुत छोटी होती थी जब मैंने ये सूरत नूर जो है वो तर्जमे से पढ़ी और लफ्जी तर्जमे से पढ़ी, मेरा ख्याल है 16-17 साल की उम्र होगी तो, या 17-18 कुछ इस तरह। तो ये जो लौला लफ्ज है ना, उस वक्त से मेरे जैसे दिल के अंदर जो है ना वो आ गया, लौला इस समय तुमहू, लौला ऐसा क्यों ना हुआ। तो अक्सर जैसे कोई मैं बात सुनती हूँ कि किसी के बारे में कोई बात कह रहा है, बड़ा आराम से लोग बात करते हैं, औरतें खास तौर पर, किसी की बेटी के बारे में, किसी के बेटे के बारे में, किसी औरत के बारे में, किसी शौहर के बारे में, कि फलां को फलां के साथ देखा था, वो इकट्ठे बस स्टॉप पर खड़े थे, वो बस में इकट्ठे थे या मॉल में कहीं थे, तो लोग खड़े देख कर क्या क्या बातें करते हैं। और आप देखें कि आपने पीछे कल के सबक में आपने पढ़ा कि जब तक चार लोग ऐनी गवाह ना हो किसी चीज के, खास तौर पर जिना के, तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते, वरना बात करेंगे तो क्या है, फिर कोड़ों की सजा मिलेगी। तो अब यहाँ पर भी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पर जब इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया, तो आम मुसलमानों को एक इखलाकी तालीम दी जा रही है, इस्लामी मुआशरे का इखलाकी उसूल सामने रखा जा रहा है कि इस्लामी मुआशरे में हर मुसलमान मर्द और औरत का ये हक है कि वो दूसरों के बारे में हुस्ने जन रखे और उस वक्त तक उनके इस हक का एहतराम करे जब तक दलील से ये साबित ना हो जाए कि वो शख्स जो है वो अब हुस्ने जन का हकदार नहीं है। तो इस्लामी मुआशरे में एक मुसलमान औरत हो या मर्द, उस पर दूसरे मुसलमान औरत और मर्द के लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके लिए जो है वो हुस्ने जन रखे। और अगर कभी कोई कान में ऐसी बात पड़ भी जाए, कोई सुनी सुनाई बात, कोई अफवाह, कोई बात ऐसी सामने आए जो कि हुस्ने जन को मजरूह करने वाली हो, हुस्ने जन को मुतासिर करने वाली हो, तो इस सूरत में भी जो है वो फौरन बात को आगे नहीं ट्रांसफर करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए जो है वो अपने आप को बदगुमानी से बचाना चाहिए और तावीलात करनी चाहिए कि हो सकता है जो है ये बात गलत हो सकता है बताने वाले ने जो है वो गलत बता दिया हो, और हो सकता है किसी का बीच में कोई झगड़ा हो तो इसलिए कोई ऐसी बात हो गई है। तो हत्तुल इम्कान अपने भाई की मुदाफियत करनी चाहिए। अब यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, लौला इज समे तुमु जन्नल मोमिनून वल मोमिनात, फिर ऐसा क्यों ना हुआ, लौला ऐसे, देखिए कितना जबरदस्त अंदाज है ना, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस समय तुमहु, जिस वक्त तुम लोगों ने उसे सुना था, किन्होंने सुना था? सहाबा और सहाबियात ने, मोमिन और मोमिनात ने, जन्नल मोमिनून वल मोमिनातु, तो उस वक्त जो है जन्ना गुमान किया ईमान लाने वाले मोमिन मर्दों ने, वल मोमिनातु और मोमिन औरतों ने, बे अनफोसेहिम अपने आप से, खैरा नेक। तो उस वक्त ईमान लाने वाले मर्दों ने और औरतों ने अपने आप से नेक गुमान क्यों ना किया, ऐसा क्यों ना हुआ? अब आप देखें कि यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बात तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना की हो रही है, तो ये बे अनफोसेहिम क्यों आ गया? यानी आपस में जो है वो नेक गुमान करना, ये क्यों अल्लाह ताला कह रहे हैं? इसकी असल वजह ये है कि जब एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को बदनाम करता है, रुस्वा करता है, तो दरअसल वो अपने आप को बदनाम और रुस्वा करता है। कुरान यहाँ पर ये तालीम देना चाहता है कि मुसलमान जब किसी दूसरे मुसलमान पर ऐब लगाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको तकलीफ देता है, तो दरअसल वो अपने किरदार को ऐबदार करता है, वो खुद तकलीफ उठाता है, खुद नुकसान अपना जो है वो करता है। तो दूसरों की रुसवाई दरअसल उसकी अपनी रुसवाई है। तो इन नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन भाई भाई हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको इखलाकी उसूल दिया है, उनकी जो गैरत है उनको ललकारा है, और ये बात कही है कि वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की बेटी थी, उनके बारे में यानी आम सब लोगों को पता था कि वो नेक हैं, वो मुत्तकी हैं। तो अगर किसी ने तोहमत लगाई और मुसलमानों ने तोहमत की खबर सुन ली, तो मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें जो है उन्होंने नेक गुमान क्यों ना किया? उस वक्त उन्होंने क्यों ना ये कह दिया, वकालू हाजा इफ्कुम मुबीन, उन्होंने ये क्यों ना कह दिया कि ये तो सरीह बोहतान है। अब आप देख लें कि यहाँ पर जो है वो इफ का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और इफ जो है हमजा फा काफ, इफ जो है इसके मानी है किसी चीज को उल्टा कर देना, बात का रुख जो है वो फेर देना, झूठी मनगढ़ंत खुद तराशीदा और खिलाफ हकीकत बात को इफ कहते हैं। तो बाज झूठ ऐसे होते हैं जिनका जिक्र जबान पर भी नहीं आना चाहिए, और ये झूठ तो मुसलमानों की माँ से मुतल्लिक तराशा गया था, ये तो उम्महातुल मोमिनीन में से थी जिनके बारे में इतनी बड़ी बात कही गई, तो मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुमने ये क्यों ना कहा, वकालू हाजा इफ्कुम मुबीन, कि ये तो सरीह बोहतान है। तो इस हिस्से में आप देख लीजिए कि हमें जो है वो सहाबा और सहाबियात का बहुत ही अच्छा सा किरदार भी हमारे सामने आता है, जिनमें आपने जो है वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बारे में कि उन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी कि मैं अगर होता सफवान की जगह तो इस तरह का ख्याल नहीं कर सकता था। फिर उनकी बीवी ने भी ये बात कही थी ना कि मतलब उन्होंने भी हुस्ने जन जो है उसका जो है वो इजहार किया था, फिर वो जो लौंडी थी उसने भी हुस्ने जन का इजहार किया था। तो मुसलमानों में ऐसे लोग तो थे कि जिन्होंने हुस्ने जन जो है वो किया था, लेकिन हजरत हसान, हजरत मिस्का और हजरत हमना, इनसे गलती हो गई थी, वो भी मुनाफिकीन के साथ मिल गए थे। तो ये आयत नंबर 12 जो है मुझे और आपको अमली जिंदगी में बहुत बड़ा असूल देती है, और वो क्या है कि जब किसी के बारे में कोई बात सुने तो उसका पतंगड़ ना बनाएं और अफवाहें ना फैलाएं, बगैर तहकीक के बात को आगे ट्रांसफर ना कर दें। मसलन फलां को डिपोर्ट कर दिया गया, और अभी पिछले दिनों एक बात मैंने ऐसी सुनी कि किसी को डिपोर्ट कर दिया गया। मैंने बैग पे जाके 2-3 लोगों से जब तहकीक की तो उसकी कोई हकीकत नहीं थी ना। तो क्या होता है कि एक इतनी बड़ी बात जो है आप फौरन आगे किसी के बारे में कह देते हैं। अच्छा, वो बेटी उनकी आई हुई है घर में, कोई भी वजह हो सकती है, बेटी जो है वो घर में आई हुई है वापिस वालदैन के पास, तो आप कहते हैं ऐसे लगता है शायद उसकी लड़ाई हो गई है, अब बात आगे आगे ट्रांसफर जब होती है तो बदल जाती है, फिर क्या होता है कि शायद उसकी तो तलाक ही हो गई है, पता नहीं अब उसके शौहर ने भेज दिया। तो अब क्या है कि देखिए बात कैसे बिल्कुल जो है तब्दील हो गई ना, और हमें क्या करना है, अपनी जबान को तकवा की लगाम देनी है, हमें अपनी सोचों को अल्लाह के खौफ का पाबंद करना है। और जब किसी की औलाद के बारे में, जब किसी की बीवी के बारे में, किसी के शौहर के बारे में, किसी के बारे में वट एवर कोई भी किसी के बारे में जब लोग बुरी बातें कर रहे होते हैं तो आप भी उसमें शामिल हो जाती हैं, कोई भी उसमें शामिल हो जाता है, आप जरूर सोचा करें कि अगर इस जगह मेरी बेटी होती और मेरी बेटी पर लोग इस तरह बातें कर रहे होते तो कितना मेरा दिल अफसरदा होता, इस जगह अगर मेरा बेटा होता, मैं होती, आप अब जब अपने बारे में आप सोचेंगी ना तो आप फौरन आपके आपका जो है वो जमीर जागेगा और आपको अंदाजा होगा कि कितना दुख और तकलीफ होता है। और इस्लाम ऐसा दीन है, इतना खूबसूरत दीन है कि ये इंसान की फीलिंग का, सोचों का एहतराम करता है, उनका ख्याल करता है। तो अब यहाँ पर भी जो है वो यही बात की जा रही है कि मुसलमानों तुमने, तुम्हें क्या हो गया था उस वक्त जब तुमने ये बात सुनी थी, तो तुमने क्यों नहीं कह दिया कि ये तो बिल्कुल सरी झूठ है, मुबीन खुला झूठ है। लौला जाउ अलैहि बिअरबाती शुहदा, वो लोग अपने इल्जाम के सबूत में फिर चार गवाह क्यों ना लाए, तो कितने गवाह लाने चाहिए थे, चार गवाह लाने चाहिए थे। आपने कल के सबक में ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई जो है ये कहता है, किसी पर इल्जाम लगाता है, कज़्फ करता है, तो अब उसको जो है वो क्या करना है कि उसने जो है वो चार गवाहों को पेश करना है, और अगर वो चार गवाह न लेकर आए तो यही लोग जो है वो अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। ये आयत नंबर जो है वो पीछे आपने पढ़ा था, हाँ ये देखिए आयत नंबर 6 में पढ़ा था। तो उनको क्या करना था, 6 में भी आपने पढ़ा और इसके अलावा ये आयत नंबर 4 में भी है ना, 4 से लेकर 5-6 यही बातें जो है उसमें चल रही थी। तो चार गवाह जो हैं वो जरूरी हैं। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि जब वो चार गवाह नहीं ला सके थे तो फिर क्यों उन्होंने बातें की, तो इसका ये मतलब है कि क्या है, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, अब के वो गवाह नहीं लाए, فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, तो अल्लाह के नजदीक वही झूठे हैं। अल्लाह के नजदीक के माने क्या है, अल्लाह के कानून में, अल्लाह के कानून के मुताबिक ये लोग जो है वो झूठे हैं। क्यों, इसलिए कि वो चार गवाह लेकर नहीं आए। وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, और अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजलो करम ना होता, वरहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरती, और तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रहमत ना होती, लमस्सकुम फीमा अफतुम फीही अज़ाबुन अज़ीम, तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे, जो ये बातें तुम भी इनमें शामिल हो गए थे, लमस्सकुम, तो जरूर पहुंच जाता तुमको, जरूर छूता तुमको, फी मा अफत तुम फी ही, मैं जो अफत तुम फैज हासिल किया, मसरूफ थे तुम, मुनहमिक थे तुम, फैलाया तुमने फी ही इसमें, अजाबुन अजीम, तो तुम्हारे लिए इसमें बड़ा अजाब था। तो अफत तुम का लफ्ज जो है ये फा या द्वाद, इसका मतलब होता है किसी जगह से पानी उछल कर बह निकले, फादल मा, और आपने पीछे सूरत तौबा में पढ़ा था कि तरा आयुनहुम तफीदु मिन दमी, कि वो साहबा जिन्हें गज़वाए तबूक में सवारी नहीं मिली थी, ज़ादे राह का इंतजाम नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी गवाही दी कि वो जाना चाहते थे और ना जाने की वजह से, क्योंकि वो गरीब थे और सवारी का इंतजाम नहीं था, तो वो लोग रो रहे थे, तरा आयुनहुम, तुम देखते हो उनकी आंखों को, तफीदु मिन दमी, कि उसमें से आंसू जो है वो बहते हैं। तो फा या द्वाद जो है इसके मानी फिर क्या है, इसके मानी है कि मसरूफ हो जाना, ये एक मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि बात से बात निकालते हुए आदमी कहीं से कहीं जा पहुंचे और बात का बतंगड़ बना डाले। अब क्या किया तुमने कि तुमने जो बात का पतंगड़ बनाया था, तुम लोग जो वाकया इफ के मामले में जो है वो मुनहमिक हो गए थे, उसके अंदर ही चले गए थे और उसी में मसरूफ हो गए थे। अगर तुम पर अल्लाह का फजल ना होता, लोगों अगर तुम पर अल्लाह का रहम ना होता, तो फिर तुम्हें जो है इस सिलसिले में ये जो तुमने अमल किया इसमें बहुत बड़ा गुनाह तुम्हें आकर जो है वो पकड़ लेता, तो जिस शगल में तुम पड़े थे उस पर सख्त अजाब तुम पर वाकया हो जाता। तो ये अल्लाह का फजल करम और अल्लाह की रहमत से क्या मुराद है? मुफस्सरीन कहते हैं इसके मानी है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा की जो है वो मोहलत दी और तौबा की तौफीक दी, फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। तो ये जो अल्लाह का फजल है और अल्लाह का करम है इससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जो है वो तौबा की तौफीक दी और उनकी तौबा को कबूल भी कर लिया। तो ये था अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम। इससे क्या बात पता चलती है कि अगर कोई गलती करता है और गलती करके उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए कि मैंने गलती की है, तो ये जो एहसास है ना ये बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह की रहमत है। ऐ दिले जिंदा कहीं तू ना मर जाए कि जिंदगानी इबादत है तेरे जीने से, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। तो जब जमीर जिंदा होते हैं तो इंसान जो है वो अपनी गलतियां जो हैं उनको महसूस करता है कि मेरी गलती क्या है, और जब गलती का ही जो है वो इदराक ना हो या गलती जो है उसको एडमिट ना किया जाए तो इंसान पर इस्लाह के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो मोमिन हैं जो कि मुजरिम बन गए थे, तो जो मुजरिम बनते हैं उन पर तो अल्लाह का अजाब आ जाता है, तो इनको अल्लाह ताला ने अजाब से दुनिया में भी बचाया कि अजाब इनसे टल गया, और इसकी वजह क्या थी कि अल्लाह ताला ने इनको तौबा की तौफीक अता की, इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली और इस वजह से जो है वो गुनाह इनसे टल गया। अल्लाह ताला ने इनसे फिर आखरत में भी अफो दरगुजर का जो है वो वादा किया हुआ है ना, अगर लोग सच्ची तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनको माफ कर देगा। तो ये फजल और रहमत से मुराद तौबा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दरगुजर है, वरना जिस फितने में तुम मुब्तिला हो गए थे तुमने अपने आप को अजाब का मुस्तहिक कर लिया था। तो यहाँ पे इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि मा अफदतुम फीही, इसको आप याद कर लें, ये मुहावरा है, चश्मे के फूटने के लिए पानी के बहने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बातों में मसरूफ होना, बातों में खोए रहना, तो उसके लिए भी जो है वो इस्तेमाल होता है कि इतना जब बंदा बहुत बातें करता है तो आप देखें कि कोई काम की बातें नहीं होती, फिर क्या होता है कि बात का पतंगड़ बनना शुरू हो जाता है। फिर आयत नंबर 15 में फरमाया इस तलक कहू ना हू भी अलसनाते कुम बतकुलू ना भी अफवाहे कुम मा लैसा लकुम भी इल्मुन बतासबू ना हू हयिनन वहुवा इंदल्लाही अजीम। यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो बड़ा ही जो है वो जबरदस्त अंदाज है कि इस तलक कहू ना हो कि जब तुम जो है इसका जिक्र करते थे भी अलसिनाते कुम अपनी जबानों से, ये जो तलक कहू ना है या पहले भी पढ़ चुकी हैं लाम काफ वो लाम काफिया, वैसे तो इसके मानी होते हैं मुलाकात करना बात करना। अब यहाँ पे हो रहा है आप देखें काफ के ऊपर शद आ गई है, और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब जो है वो हरूफ की ज्याती होती है या अराब की ज्याती हो जाती है तो मानी जो है उसमें भी शिद्दत पैदा हो जाती है। तो तलक्कौना हू जो है तलक्का, इसका मफहूम ये है कि एक दूसरे से बात पूछे और नकल करे। एक तो होता है ना कि आपस में मुलाकात करना, यहाँ पे क्या है इस तलक्कौनहु बिअलसिनातिकुम कि तुम अपनी जबानों से जो है वो जिक्र कर रहे थे, जबानों से मुलाकात कर रहे थे, जबानों के जरिए। तो मानी क्या है कि एक जबान से जो बात निकल रही थी तो दूसरी जबान उसको नकल कर रही थी। यहाँ बताया जा रहा है तुम्हारी जबानें किस तरह मुलाकात कर रही थी आपस में, के बात को सुनकर बगैर दलील के, बिला दलील और बिला तहकीक उसको आगे आगे कर रही थी। इस तलक्कौनहु बिअलसिनतिकुम, और जब तुम जो है वो तुम्हारी एक जबान से दूसरी जबान इस झूठ को लेती जा रही थी। फतकुलूना, और तुम कह रहे थे, बिअफवाहिकुम अपने मुंह से, और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहते जा रहे थे, मा लैसा लकुम भी इल्मुन, जिसके मुतल्लिक तुम्हें कुछ इल्म नहीं था। फतहसबूनहु हय्यिना, और तुम उसको मामूली बात समझ रहे थे। और हय्यिना जो है, ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, हा वो नून जो है इसका रूट है, और अगर हा के ऊपर फतह हो तो ये हल्की नरम आसान जो है वो आसान को कहते हैं, अगर हा के ऊपर पेश हो तो ये जिल्लत और रसवाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो तुमने जो है बगैर सोचे समझे इतना बड़ा गुनाह किया कि एक बात को सुना और बगैर दलील के, बगैर तहकीक के उसको आगे नकल कर दिया। तुमने उसको मामूली बात समझा, बता सबूनहू हय्यिनन, तुमने उसको बड़ी ही मामूली बात समझा, तुम्हें पता भी नहीं था। मा लैसा लकुम बिही इल्मुन से मुराद क्या है, कि तुम्हारे पास जिस बात को तुम नकल कर रहे थे उसकी कोई दलील नहीं थी कि वो सही है, वो कैसी है, बस आगे आगे ट्रांसफर, आग की तरह बात चिंगारी थी और आग का अलाव बनकर फैल रही थी। तुमने उसको मामूली बात समझा, हल्की बात, वह हुआ इंदल्लाही अजीम, और वो अल्लाह के नजदीक तो बहुत बड़ा गुनाह था। अल्लाह के नजदीक क्या है बहुत बड़ा गुनाह, कि बगैर दलील के, बगैर तहकीक के बात को आगे आगे ट्रांसफर करते जाना, और ऐसी बात जिसे दूसरे मुसलमान को सख्त तकलीफ हो, जो बात दूसरे मुसलमान के लिए जो है वो जिल्लत का और रसवाई का जो है वो जरिया बन जाए। तो असल में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पर जो इल्जाम था, एक शरीफ खानदान जो है उसकी जिल्लत का सरो सामान लोग पैदा कर रहे थे, आगे आगे बात को ट्रांसफर कर रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा और हजरत सफान रजी अल्लाह अन्हो की इज्जत और आबरू पर हमला किया गया था। ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। मुसलमानों, तुमने इसे हल्का समझ लिया, तो इसको हल्का मत समझो। तुमने क्यों इसको जो है वो हल्का समझा, वाह हुआ इंद अल्लाही अजीम, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बहुत ही बड़ा गुनाह था, अल्लाह के नजदीक ये बात बहुत ही बड़ी बात थी। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये बात भी देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो है वो काबिले तवज्जो है, कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, सही मुस्लिम की रवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात आगे जो है वो चला दे, सुनी सुनाई बात को वो आगे जो है वो बता दे। तो ये बात जो है ये क्या है, कि ये बात जो है ये झूठी बात है, और ऐसा करने वाला जो है वो झूठा है। अच्छा, आप यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि मौजूदा दौर जो है वो मीडिया का दौर है, और यहाँ पे जो है वो नशरो अशात के जरिए और मीडिया के जरिए जो है वो बात को बहुत तेजी से आगे ट्रांसफर किया जाता है। मसलन, आपने एक बात सुनी, आपको अभी सही तरह उसका सही पता भी नहीं है, आपने ईमेल लिखी, आपने जितने आपके पास जो थे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम थे उन सबको वो ईमेल आपने क्लिक कर दी। थोड़ी देर बाद आपको पता चला वो जिसने आपको बताई थी वो तो गलत थी। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो तहकीक ही नहीं की, और शौक भी बहुत होता है कि जो है वो बहुत ही जो है वो हॉट बात और बहुत ही अहम बात लग रही होती है और अजीब बात लग रही होती है, और तेजी से उसको जो है वो तबीयत ये चाहती है कि आगे आगे उसको जो है वो ट्रांसफर कर दे। तो इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता, बल्कि इस्लाम क्या कहता है कि सोच समझ कर जो है वो बात को आगे जो है वो मुंतकिल किया जाए। और याद रखिएगा इस बात को कि ये जो दो होंठ है, जो बात इन दो होंठों के अंदर से निकल जाएगी ना, फिर वो वापस नहीं आ सकती, फिर आप उसके लिए खा कुछ ही जो है वो क्यों ना कर लें। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आयत नंबर 16 में फरमाते हैं, कि वलौला इस समय तुम हो, और ऐसा क्यों ना हुआ इस समय तुम हो जब तुमने इसको सुना, कुल तुमने कहा मा यकूनु लना अन नतकल्लमा बिहाजा। कितनी खूबसूरत बात है, इस्लाम कितना मुहज्जब दीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार एहसास दिला रहे हैं फिर ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तुमने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के बारे में जो है इल्जाम सुना, हजरत सफवान के बारे में इल्जाम सुना, कुल तुम कहा तुमने, यानी उस वक्त जो है तुम्हें कहना चाहिए था कि मा यकूनु लना, नहीं है हमारे लिए अन नतकल्लमा बिहाजा, कि हम ऐसी बात करें, कि अपनी जबान से ऐसी बात निकालना तो हमें जेब नहीं देता, हम ऐसी बात नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। सुबहानक हाजा बोहतानुन अजीम, सुबहान अल्लाह ये तो एक बोहतान अजीम है। अब आप देखें कि यहां पर जो है ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे ही है जैसे माज अल्लाह कहा जाए, सुबहान अल्लाह माज अल्लाह, मतलब क्या है कि जब ये बात तुम्हारे सामने आई थी तो तुम्हें फौरन ये कहना चाहिए था कि बेसबूत और बे गवाही के किसी मोमिन की शान में ऐसी बात जबान से निकालने का मुझे कोई हक नहीं है, माज अल्लाह ये तो सरी बहतान है। तो ये है इस्लाम की तालीमात, ये है इस्लाम का पैगाम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो नाम निहाद मुसलमान हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पर बेहयाई का इल्जाम आयद करे वो काफिर है। क्यों? कि वो अल्लाह और कुरान की तकजीब करता है, वो अल्लाह और कुरान को झुठलाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की गवाही दी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि याइज़ुकुम अल्लाहु अन तऊदु लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन, याइज़ुकुम वाव ऐन ज़ा वाव ऐन ज़ोए, अल्लाह तुमको वाज करता है, अल्लाह तुमको नसीहत करता है, अन तऊदु लिमिस्लिही, आदा या उदू का मतलब होता है किसी चीज का एआदा करना, उसको दोबारा करना, उसको रिपीट करना, ऐन वाउदाल इसका रूट है, अन तऊदु के ना दोबारा कहना, ले मिसले ही ऐसी बात, अबदन कभी भी, अल्लाह तुम्हें ये वाज करता है कि फिर आइंदा कभी ऐसा काम ना करना, कभी ऐसी बात ना करना, इन कुंतुम मोमिनीन अगर हो तुम मोमिन। और ये बात कि इन कुंतुम मोमिनीन ये बहुत ही अफसुरदा करने वाली है, ये ऐसे ही है कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो ईमान के साथ इस तरह की बातें नहीं हो सकती, यानी ईमानदार लोग ऐसे नहीं होते जो अपनी जबान की हिफाजत ना करें। तो ईमान जो है उनको ऐसी अफवाह साजी करने से, बोहतान लगाने से और बातों को बगैर दलील के आगे ट्रांसफर करने से ईमान जो है वो रोकता है। अगर हो तो मोमिन, यानी अगर मोमिन हो तो फिर तुम्हें ये जेब नहीं देता, ऐसा हो नहीं सकता। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, और अल्लाह तुम्हें जो है वो आयात को वाजे करके बयान करता है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और वो अलीम भी और हकीम भी है। अब आप देख लें कि यहां पर भी नुमाया तौर पर ये बात कही जा रही है कि वाकया इफ्क हो गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो बतौर तंबीह के ये आयात नाजिल कर दी और तुम्हें समझाया। क्यों? अल्लाह ताला जो है वो बताना चाहते हैं कि ईमान जो है वो किसी मोमिन की सबसे कीमती मता है, और अगर ईमान ही उसके किसी रवैये की वजह से खतरे में पड़ जाए तो मोमिन को अपनी फिक्र करनी चाहिए। तो ये सारी वाकया इसके बाद अल्लाह ताला ने आयात नाजिल की। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह को पता है कि सही क्या है, गलत है, गलत क्या है, और अल्लाह ताला हकीम है। तो अल्लाह के जो फैसले हैं वो सारे ही हिकमत के फैसले हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जरूरी समझती हूँ कि मैं आपको बताऊं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जो है उनके फजाइल क्या थे, यानी उनका दर्जा, उनका मकाम और फिर इतनी बड़ी बात जो है वो उनके खिलाफ जो है वो हुई। तो इस सिलसिले में अगर जो है आप हिस्ट्री का मतलब करें तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की चंद खसूसियात हमारे सामने आती हैं और इन बातों को वो खुद भी बयान किया करती थी। नंबर एक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक रेशमी कपड़े में हजरत आयशा सिद्दीका की तस्वीर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि ये तुम्हारी ज़ौजा है। दूसरी बात क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सिवा किसी कंवारी लड़की से निकाह नहीं किया, सिर्फ ये कंवारी थी। तीसरी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की गोद में हुई, उस वक्त आपका चेहरा जो था हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की गोद में था। कितना खूबसूरत ताल्लुक है मियां बीवी का और कितना खूबसूरत ये रिश्ता है। चौथी बात कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के घर में दफन किए गए। पांचवी बात कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के साथ एक लिहाफ में होते थे तो उस वक्त वही नाजिल होती थी, जबकि किसी दूसरी बीवी को ये खसूसियत हासिल ना हो सकी। छठी बात कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के इल्जाम की बरात जो है वो आसमान से नाजिल की गई, आपको बरी किया गया कि आपने कोई गुनाह नहीं किया। सातवीं बात कि आप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की बेटी हैं, सिद्दीका हैं और उनमें से हैं जिनसे दुनिया ही में मगफिरत का और इसके करीम का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जो है ये आलिमा थी, हाफिजा थी, फकीह थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी अहदीस इन्होंने रवायत की और तकरीबन आधी सदी तक ये जो है इन्होंने मुअल्लिमा का किरदार अदा किया और बड़े बड़े सहाबा ने इनसे जो है वो दीन को सीखा और अल्लाह ताला ने 10 आयात नाजिल करके इनकी बरात का ऐलान किया और इनके फजल और इज्जत को और बढ़ाया। इसी तरह इनकी तोहमत इनसे हटाई, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गई थी ना और अल्लाह ताला ने कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बरी किया था, मरियम अलैहिस्सलाम पर भी तोहमत लगाई गई थी ना, कैसे अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को बरी किया था, तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को जो है वो बरी कर दिया। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करम करने वाला है और अल्लाह के फैसलों में बड़ी हिकमत है। और फिर खास तौर पर वो बात जो आपको याद रखनी है कि वाकिया इफ को अल्लाह ताला उस पे तबसरा करते हैं, मुसलमानों की जो गलतियां हैं उन्हें एहसास दिलाते हैं और कहते हैं कि ए मुसलमानों ला तहसबूहु शरल्लाकुम बल हुआ खैरुल्लाकुम, कि तुम इस वाक्य को अपने हक में शर ना समझना बल्कि तुम्हारे लिए खैर ही है। तो आप देखें कि आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई वाकया या आजमाइश या कोई मौका ऐसा होगा जो आपको बहुत बड़ा लगा होगा और आप ये समझती होंगी कि मुझ पे तो गम का पहाड़ टूट पड़ा है। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसी वाकये को, उसी मुश्किल को इतना ज्यादा अपने ऊपर लेते हैं कि जो है वो कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों है और हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हम पे बड़ी ज्यादती हो रही है और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर ऐसा करेगा या मेरी बीवी ऐसे करेगी या मेरी औलाद ऐसे करेगी, फिर ऐसा कैसे हो गया ना, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरे तो तसव्वुर में भी नहीं था। लेकिन याद रखें कि दुनिया की जिंदगी इम्तहान गाह है और नंबर दो कि जो कुछ भी होता है उसमें यकीनन अल्लाह की तरफ से कोई खैर होती है जो हमारी सतही नजर को नजर नहीं आती और बाद में वक्त साबित कर देता है कि फलां जो फिर बात हुई थी उसी में मेरे लिए जो है वो ये भलाइयां जो है वो साबित हुई। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। और आप सोचें कि एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तकरीबन महीना भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो और बाकी सहाबा जो है इन्होंने सबर किया और फिर उसके बाद जो है वो वही नाजिल हुई। मैं सोच रही थी इस बात पर कि अल्लाह के नबी इतने परेशान, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह कितने परेशान होंगे और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना और सारे मुसलमान कितने दुखी होंगे, सब अल्लाह के नबी से बहुत प्यार करते थे ना, कि इतनी बड़ी बात हो गई और इसलिए वो अल्लाह के नबी की मदद भी नहीं कर सकते, कैसे मदद करें, अब क्या कहें। अब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना अपने बारे में क्या कहें कि मैंने ये नहीं किया। कोई मानने को हालात जब ऐसे हों, एक रुख चल रहा हो, कौन तैयार होता है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने जल्दी आयतें क्यों नहीं नाजिल की, एक महीने के बाद तकरीबन आयात क्यों नाजिल की और फिर बरात क्यों की। अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाला है, फौरन आयतें नाजिल करके बता सकते थे ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ सकते थे कि मोहम्मद फिक्र नहीं करो, कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है, अब्दुल्ला बिन उबई ने ऐसे ही बात उड़ा दी है। लेकिन एक महीना भर तकरीबन उसके बाद आयात नाजिल हुई, जो इस बात का सबूत है सब कुछ अल्लाह की नजर में है, सब अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह के फैसले हकीमाना है। अल्लाह ने इसी में मुसलमानों के लिए जो है वो खैर रखी, ताकि मुसलमानों के इखलाक का पता चले, ताकि मुसलमान जो है वो सब्र करें, ताकि मुसलमानों के दर्जात बुलंद हों, ताकि मुसलमान अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाएं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनके पास गैब का इल्म नहीं है, वो सिर्फ एक जो है वो रसूल है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 19 में जो है बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने वाकया इफ्क में जो है वो इल्जाम लगाकर मुस्लिम मुआशरे में बद अखलाकी फैलाने की कोशिश की थी, वो क्या चाहते हैं। इन लजीना युहिबूना, बेशक वो लोग जो मोहब्बत करते हैं, अंतशी अल्फाहिशात, जो लोग ये पसंद करते हैं कि अंतशिया के अशात करें, तशिया अशात के लिए आता है, ये लफ्ज आप बहुत कसरत से सुनते हैं, इसका रूट है शीन या आयन और इसके मानी है मुंतशिर होना, शाया करना किसी चीज को। तो जो लोग ये चाहते हैं कि शाया करें, मशहूर करें, अल्फाहिशातु फोहश को, फाहिशा को, और फाहिशा जो है फिर इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फाहिशा में जो है वो बेहयाई, बदकारी, और यहाँ पे आप देखें कि झूठी खबर की इशात को भी अल्लाह ताला बेहयाई कह रहे हैं। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, बेशक जो लोग ये चाहते हैं, अंतशी अल्फाहिशातु, के बेहयाई जो है वो फैले, उसकी अशात हो। और बेहयाई से मुराद क्या है कि ऐसे शेर, गाने, तस्वीरें, खेल तमाशे, नाइट क्लब्स, मूवीज, नावल, अफसाने, रक्स, और को जो को महफिलें होती हैं, मखलूत महफिलें, जिनके जरिए से जो है वो बेहयाई और बेहयाई जो है वो फैले, तो उन सब के लिए फाहिशा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग ऐसा चाहते हैं फिल्लाजीना, में उन लोगों के आमनु, जो ईमान लाए हैं, तो वो लोग जो ईमान लाने वालों के ग्रोह में फोहश बातें फैलाना चाहते हैं, तो ये फोहश बातें जो फैलाने वाले हैं, लहुम अजाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। यानी किसी भी एक हरकत के जो है वो सोसाइटी पर क्या असरात होते हैं, कितने लोग उससे मुतासिर होते हैं, कितने घर उससे मुतासिर होते हैं, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। तो इसलिए पूरी कुव्वत से बुराइयों को मिटाने की कोशिश करो। तुम जो बातें जबान से निकालते हो छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि बेहयाई और फुहाशी फैलाने वालों के लिए, जो लोग ईमान लाने वालों में ये फैलाते हैं, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो दुनिया में क्या करना चाहिए कि इनको पकड़ना चाहिए, इनका मुहासबा करना चाहिए, और जो है वो इन्हें सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा ये इस तरह की बातें ना फैलाएं। اور پھر آخرت, آخرت میں تو اللہ پکڑے گا. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ رؤوف الرحیم, اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے, رؤوف بہت ہی جو ہے وہ مہربانی کرنے والا ہے, تمہاری تکلیف میں تمہیں دیکھ کر جو ہے وہ تمہیں تکلیف سے نکالنے والا ہے, تو یہ جو چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی اس سے بہترین نتائج جو ہے وہ نکلتے. تو یہ جو واقعہ عفق تھا جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا, تو اس سے جو ہے وہ مسلم سوسائٹی کے اندر بہترین نتائج پیدا ہوتے, ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی اور مسلمان سارے ہی جو ہیں وہ متاثر ہوتے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کتنا متاثر کرتے ہیں خاندانوں کو, افراد کو. بعض اوقات کسی کی عورت پر ایسی جھوٹی ایک بات کہہ دی جائے اور شوہر کے دل میں ڈال دی جائے تو شوہر کا دل ہی خراب ہو جاتا ہے, وہ طلاق دے دیتا ہے. اور بعض اوقات کسی کے جو ہے وہ بیوی کو کہہ دیا جائے اس کے شوہر کے بارے میں تو اس کا دل خراب ہو جاتا ہے, اور پھر آپس میں جو ہے وہ محبت پیار کی فضا نہیں رہتی. تو بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن وہ بہت بڑی باتوں کا جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہیں وہ اسی طرح باتیں جو ہیں ان کو آگے پھیلایا جائے, اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا. تو دوبارہ اسی بات کو جو ہے وہ دہرایا گیا کہ جو ہے یہ اللہ کا بڑا فضل تھا, یہ اللہ کی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے جو ہے وہ بچا لیا. اگر اللہ تمہاری تم پر گرفت کر لیتا, اللہ تمہیں پکڑ لیتا, پھر تمہارا کیا بنتا؟ تو یہ ہے اللہ کی شفقت اور رحمت کہ اس نے تمہارے اس جرم کو اور سزا کو معاف کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں پر نہ چلنا, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا, کہنا ماننا, اور اتباع جو ہوتا ہے یہ اطاعت کا اگلا درجہ ہوتا ہے, جیسے کسی کے فٹ پرنٹ پر چلنا, کسی کو فالو کرنا. تو تم پیروی نہ کرنا خطواتی, خا طا و, یہ جو ہے وہ دو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو کہتے ہیں. تو اس طرح قدموں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تم جو ہے شیطان کے نقشے قدم پر, اس کے پیچھے یا اس کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا. وَمَنْ يَتَّبِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا یعنی اس کے قدموں کے پیچھے چلے گا, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, تو یاد رکھنا کہ شیطان فحش اور بدیہی کا حکم دے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ شیطان جو ہے اس کا کیا کردار رہا ہے, اس کی کیا کہانی رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو ہے وہ بہکایا اور جنت سے نکلوایا, اور بہکا کر اللہ کی نافرمانی کروا کے ان کے کپڑے اتروائے. اور آج شیطان کیا کرتا ہے کہ عورت کو حسن کے نام پر, آزادی نسواں کے نام پر, ترقی کے نام پر, ایک طرف تو فیشن کر کے کپڑوں سے محروم کرتا ہے, دوسری طرف مردوں کے شانہ بشانہ ترقی کا جو ہے وہ نعرہ لگا کر عورتوں کو گھروں سے نکالتا ہے, اور کہتا یہ ہے کہ حقوق, یعنی اس طرح حقوق ملیں گے کہ عورت جب مردوں کے ساتھ نکلے گی اور چلے گی اور کام کرے گی. لیکن آپ دیکھ لیں, کبھی آپ غور کریں کہ بحثیت عورت کے جو آپ کے فرائض ہیں اس میں تو کوئی کمی نہیں آتی. مرد تو نہیں شیئر کرتا نا, آپ کو بیوی بننا ہے اور آپ کو بچے کی یا بچوں کی ماں بننا ہے, آپ حاملہ ہیں, آپ بچہ پیدا کرتی ہیں, بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے. تو قدرت نے گھر کے چار دیواری کے اندر کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت کے سپرد کی ہے, اور چار دیواری کے باہر کی ذمہ داری مرد کے سپرد کی ہے. تو شیطان جو ہے بڑے خوبصورت نعرے لگاتا ہے, بڑے خوبصورت انداز میں ترقی اور معیار زندگی, سٹیٹس, دنیا اور مختلف طریقے سے عورتوں کو بہکاتا ہے اور پھر مردوں کو بھی بہکاتا ہے. تو پھر اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ہے وہ عورتیں جب شیطان کے بہکاوے میں آتی ہیں اور مرد بھی جب شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں تو انسان کا سوسائٹی کا فیملی سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور شیطان کی پیروی کرنے کے نتیجے میں جذبات کی رو میں انسان بہنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ شیطان کے دو اور فریب بڑے سخت ہیں اور وہ الوسواس ہے, وہ خناس ہے, وہ انسانوں کی کمزوری سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے, خوب ان کو جو ہے وہ ہدف کرتا ہے اور چھپ چھپ کر وار کرتا ہے, اور جو کمزور پہلو ہیں کسی کے بھی اس کے ذریعے سے آتا ہے, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا, اس کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ وہ تو فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا. یعنی شیطان جس طرح تمہیں برائیوں میں ملوث کرتا ہے, تمہارے اندر سے نیکی کی تمیز کو ختم کرتا ہے, تمہیں برائیوں کے اندر دھکیلتا ہے, تو اپنے بلبوتے پر تو تم پاک نہیں ہو سکتے تھے. یہ اللہ ہے جو کہ تمہیں پاک کرتا ہے, یہ اللہ ہے جو کہ شیطان کی چالوں سے تمہیں بچاتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے, اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت, ما زکا منکم من احد ابدا, تو تم میں سے کوئی شخص ہمیشہ کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا تھا. تو پاک ہونے سے جو ہے وہ مراد کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو الزام لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پر, تو اس الزام سے پھر تم پاک نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ اللہ ہی ہے, ولکن اللہ یزکی من یشاء, کہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے, اس کا تزکیہ کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ غلطی ہونے کے بعد یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارا تزکیہ کیا, بڑے حکیمانہ انداز میں تمہیں معاف کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے نا, تو یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں معاف کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ اس موقع پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو کیا باتیں سننے اور جاننے والا ہے؟ کہ تم وہ باتیں جو چھپ چھپ کر کرتے ہو اور وہ باتیں جو کہ تم سب کے سامنے کرتے ہو. اب ہوا کیا کہ جب واقعہ عفق میں حضرت مستہ بھی ملوث ہو گئے, اور جو حضرت مستہ تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ خالہ زاد تھے اور مہاجرین میں سے تھے اور غریب تھے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی اور ان کے خاندان کی کفالت کرتے تھے, ان کی معاش کے ذمہ دار تھے. جب حضرت مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا سخت صدمہ پہنچا. باپ تھے نا, اور صدمہ پہنچنا ایک فطری امر ہے. اور جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتا چلی کہ مستہ نے بھی ایسی حرکت کی ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس خاندان کی مالی کفالت بھی کر رہے تھے, تو آپ نے غصے میں قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. انہوں نے قسم کھا لی کہ مستہ بن اساسہ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے, کیونکہ مستہ نے نہ تو رشتہ داری کا لحاظ کیا نہ ان احسانات کی کچھ شرم کی جو ساری عمر وہ ان پر ان کے خاندان پر کرتے رہے. پیاری بہنوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ افسردہ ہو کر قسم کھانا انسانی فطرت کے مطابق نظر آتا ہے, لیکن ان کے مقام صدیقیت سے جو ہے وہ میچ نہیں کرتا. مقام صدیقیت جو ہے اس سے جو ہے وہ اس کو زیب نہیں دیتا, کیونکہ مقام صدیقیت جو ہے وہ اس سے بلند تر کردار کا تقاضا کرتا تھا. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی اور آیتیں نازل ہو گئیں, جس میں بڑے پیار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس اجلت پر इस बशरी कमजोरी पर उन्हें मुतनब्बे किया गया। क्या जबरदस्त अंदाज है। और आप सोचें कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मकाम, और छोटी सी यह गलती हो गई है, और फितरी सी बात है, उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं इनकी इतनी मदद करता था, इन्होंने मेरी बेटी पे जो इल्जाम लगा उसमें हिस्सा लिया, ठीक है मैं मदद नहीं करता। अल्लाह को ये बात भी अच्छी नहीं लगी और कहा वला या तले उलुल फदल मिनकुम वसात यूतु उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजरीन फी सबीलिल्लाह वला या तली अलिफ लाम वाओ इसका रूट है और इसके मानी होते हैं कोई अच्छा काम पूरा ना करने की कसम। इसके अंदर दो बातें पाई जाती हैं, काम में कोताही और देर करना और दूसरे जो है वो कसम खाना। फरमाया वला या तली और कसम ना खाएं। कौन? उलुल फदली। उलुल फदली से मुराद जो है वो अमीर लोग, फजल वाले। फजल वाले कौन हैं? जो के अमीर हैं, खाते पीते हैं। तो अमीर लोग जो असूदा हाल हैं वो कसमें ना खाया करें। बस साथ ही, और साथ ही जो है ये भी वुसत से है, वो सीन आइन, और इसका मतलब है कि अमीर वुसत वाले। तो फजल वाले, वुसत वाले कसम ना खाया करें। किस चीज की? आई यूतु, कि वो नहीं देंगे उलिल कुर्बा कराबतदारों को, वल मसकीना और मिसकीनों को, वल मुहाजरीना और महाजरों को, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, कि वो अपने रिश्तेदार मिसकीन और महाजिर फी सबीलिल्लाह की मदद नहीं करेंगे। उनको कसम नहीं खानी चाहिए। क्या करना चाहिए? वल याफू वल यस्फाहू, उन्हें माफ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। अब आप देखें इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, आप जरा तसव्वुर तो करें। अल्लाह ताला कह रहे हैं वल याफू, उन्हें चाहिए कि माफ कर दें, वल यस्फाहू, और उन्हें चाहिए कि दिल से भी मिटा दें। माफ करने का वल यस्फाहू जो है ये आला दर्जा है। एक तो है ना कि आप किसी को कहती हैं कि जाए मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन जो बात किसी ने कही भी है वो आपके दिल के अंदर रहती है, और जब आपको याद आती है बहुत अफसरदा हो जाती है कि फला ने फला वक्त पर मुझे ये कहा था, उसने मेरी बेटी को ये कहा था, उसने इस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि वो लोग जिन्हें अल्लाह ने फजल और रिज्क की कुशादगी अता की है, और जिस तरह उनकी कोताहियों और गलतियों के बावजूद अल्लाह उनको रिज्क देता है, उनको खुला माल देता है, इन्हें भी चाहिए कि वो अल्लाह के बंदों को फयाजी के साथ, कुशादगी के साथ माफ किया करें, और उनकी गलतियों और उनकी कोताहियों से मुतासिर होकर उनकी मदद से हाथ न खींचा करें। यहां पे जो है वो रिश्तेदारी, गुर्बत, हिजरत का जिक्र किया गया है। तो इस बिना पर ये बड़े खास लोग हैं। क्यों? ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और आप क्या कहते हैं, ये रिश्तेदार बड़ा तंग करते हैं, बड़ा सताते हैं, ये करते हैं, इनका तो मुंह देखने को दिल नहीं जाता ना, और गैरों की मदद ज्यादा अच्छे तरीके से कर देते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार उनकी मदद करने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि वो बातें बहुत करते हैं, तंग बहुत करते हैं, अक्सर आ जाते हैं, फिर आप कर भी देते हैं मदद, फिर भी वो कुछ ना कुछ कह जाते हैं और आप फिर दुखी हो जाते हैं। तो कहा कि ये जो रिश्तेदार हैं मिस्कीन हैं, ये हिजरत करने वाले हैं, ये हिजरत करने वाले फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में इन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, इनका अपना एक हक है, और गलती करने की वजह से अपने उस हक से महरूम नहीं किए जाएंगे। तो तुम क्या करना, इन्हें माफ करना और फिर दिल से मिटा देना। दिल से मिटाने का मतलब क्या है? आपके दिल में भी वो बात नहीं आनी चाहिए, दिल के अंदर भी नहीं आनी चाहिए। यानी जैसे आप कहते हैं कि मैंने माफ तो कर दिया पर मुंह देखने को दिल नहीं चाहता, मैंने माफ तो कर दिया लेकिन अब मैं उसके पास जाना नहीं चाहती, मैं उसे मिलना नहीं चाहती, बस मैंने माफ तो कर दिया। या आप माफ तो कर देती हैं लेकिन क्या करती हैं, जब कभी कोई बात होती है तो फिर आप उसको जता देती है, तुमने तो ये मेरे साथ किया था, मैंने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया और फिर तुमने मेरे साथ ये किया था। तो इसका मतलब है आपने वल याफू तो किया है, वल यस्फाहू नहीं किया। क्योंकि जब माफ, जिसको माफ कर देते हैं ना, वो फिर चीज दिल में भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे है जैसे व्हाइट आउट कर दिया जाए। जब व्हाइट आउट करते हैं तो चीज नीचे से मिट जाती है ना, फिर नजर नहीं आती ना, बिल्कुल उसको जो है वो मिटा देना। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह से कहा जा रहा है कि चाहिए कि माफ कर दें और चाहिए कि दरगुजर करें। कैसे दरगुजर करें? बिल्कुल बिल्कुल उनको माफ कर दिया जाए, अपने दिल से भी ये बात निकाल दें, आपके ख्याल में भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि उन्होंने ये गलती की थी। और आयत का प्यारी बहनों जो आखिरी हिस्सा है, बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही जमीर को झंझोड़ने वाला और गरेबान में झांकने वाला और सोतों को जगाने वाला। अला तुहिब्बूना यग़फिर अल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। बड़ी मुझे ये आयत प्यारी लगती है। अल्लाह ताला पूछते हैं किससे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने से, अला तुहिब्बूना। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या नहीं तुम पसंद करते, क्या तुम नहीं चाहते फिर अल्लाहु लकुम कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर दे। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह की सिफत यह है कि वो गफूर और रहीम है। अब आप देखें कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो से अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, अबू बकर क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे? अला तुहिब्बूना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने जब उनको ये आयत सुनाई गई और जब ये आयत नाजिल हुई और आपने सुनी, आपने सुनते ही फौरन कहा, बला वल्लाह अना नुहिब्बु अन तग़फिर लना या रब्बिना, बल्ला जरूर हम ये चाहते हैं कि ए हमारे रब आप हमें माफ कर दीजिए। फिर मिस्ता की मदद शुरू की और प्यारी बहनों पहले से भी ज्यादा उन पर एहसान करने लगे। अब आप बताएं कि कुरान की आयतें सामने आती हैं ना, आप भी इसको पढ़ती हैं ना कि दूसरों को माफ कर दिया जाए, तो आप तो कहती हैं कि लेकिन माफ करना चाहिए, अल्लाह कहता है लेकिन, फिर उस लेकिन को आप इतना खींचते हैं, इतनी देर करते हैं, इतना लंबा करते हैं कि वक्त गुजर जाता है। कई लोग हैं जो जिनसे आप नाराज हैं या वो आपसे नाराज हैं, तो आपस में सुलह करनी चाहिए और दूसरों की गलतियों को माफ करना चाहिए। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह उनको माफ कर दे, उनको दूसरों के गुनाह, दूसरों की ज्यादतियां, दूसरों की गलतियां माफ कर देनी चाहिए। और जब दिल राजी ना हो और दिल बहुत नाराज हो किसी से, तो अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं भी तो अल्लाह की कितनी नाफरमानियां करती हूं ना, अब तक की जिंदगी में मैंने कितनी ज्यादतियां की, कितने अल्लाह के हक मारे और कितने अल्लाह के बंदों के मारे, कितने जानबूझकर गुनाह किए और कितने भूले से किए, कितने छुप छुप कर किए और कितने सबके सामने किए, और कितने वो हैं जो किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, कितने खलवत में किए और कितने जलवत में किए, कितने छोटे हैं और कितने बड़े हैं। और मैं भी तो रोती हूँ ना, मैं भी तो गिरियाजारी करती हूँ, आहुजारी करती हूँ, मैं उम्रे पे जाती हूँ, मैं हज करती हूँ, मैं सदका करती हूँ, मैं रोजे रखती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं लंबी लंबी दुआएं करती हूँ, कहती हूँ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, और अगर वाकई में अल्लाह से माफी चाहती हूँ तो मुझे दूसरों के गुनाहों को माफ कर देना चाहिए, दूसरों की गलतियां माफ कर देनी चाहिए, और अल्लाह से दरख्वास्त करनी चाहिए कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। और जब बहुत ही जो है मुझे भी कभी गुस्सा आता है और किसी के रवैये पे अफसोस भी होता है और कभी बहुत होता है, फिर मैं सोचती हूँ देखो मेरा रब मुझसे कितना प्यार करता है, मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि अच्छा अब मैं तुझे सोने नहीं दूंगा, रात आ जाती है मैं सो जाती हूँ, फिर ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला नाराज होकर मुझसे कहें कि अच्छा आज तुझे मैं खाने को नहीं दूंगा, मुझे तरह तरह के अल्लाह खाने देता है। फिर अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि अच्छा आज तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकती ना, अल्लाह ताला कुव्वते बिनाई से मुझे नवाजे हुए हैं। फिर अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि अच्छा अब मैं तुम्हारे पांव तुमसे ले लेता हूँ, तुम चल नहीं सकती, फिर अल्लाह ये भी नहीं कहता मैं तुम्हारी जबान तुमसे खींच लूंगा जिससे तुम झूठ बोलती हो या जो तुम बदगुमानी करती हो या तुम बातों को आगे फैलाती हो या उसका गलत इस्तेमाल करती हो, तुम अपनी जबान की हिफाजत नहीं करती। फिर अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि अच्छा तुझ पर सूरज तुलू नहीं होगा, तुम्हें मैं अंधेरे में रखूंगा। अल्लाह ताला सारी ज्यादतियां सारी गलतियां सारी कमी बेशियों के बाद भी इस दुनिया में इस जमीन पर मुझे और आपको जीने देते हैं। कितना प्यारा है मेरा रब, कितना प्यारा है आपका रब, 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला। अला तुहिब्बूना यग़फिर अल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने फौरन कहा, देर नहीं की लेकिन नहीं कहा कि मैं अपनी मगफिरत तो चाहता हूँ लेकिन, लेकिन ये लेकिन कब छोड़ेंगे, ये लेकिन कब खत्म करेंगे, जब ये आखिरी सांस की डोरी टूट जाएगी, जब आंखें बंद हो जाएंगी, जब फरिश्ता आएगा, जब जान कुनी का आलम होगा, जिस वक्त की तौबा भी कबूल नहीं होती, कब आखिर कब। आइए आइए सिद्दीक बन जाएं, आइए सिद्दीका बन जाएं, और आइए इसलिए दूसरों की गलतियों को माफ कर दें कि अल्लाह हमारी गलती जो है उसको माफ करे, हमारे गुनाह माफ कर दे। वल्लाहु गफूरु रहीम, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो ये जो आयत है और ये पूरा जो वाक्या है, वाक्या इश्क, ये हमें बताता है कि हमें अमली जिंदगी में किस तरह का मामला करना चाहिए। और ये कुरान पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक तब्दीली आनी चाहिए, एक इंकलाब आना चाहिए। और ना सिर्फ ये कि हम दूसरों की गलतियों को माफ करें, बल्कि हमें दूसरों के बारे में जो बहुत ही पता भी हो कि कोई बहुत ही गुनाहगार है और बहुत ही बुरा है, हमें अपने आप को बहुत नेक नहीं समझना चाहिए और दूसरों को बहुत बुरा नहीं समझना चाहिए। और जैसे रजम, यानी किसी ने जिना किया और उसको रजम की सजा मिली, तो रजम की सजा में जब कोई मुजरिम मर जाए तो फिर उससे पूरी तरह मुसलमानों का सा मामला किया जाता है, उसकी तजीज़ो तकफीन की जाती है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसको इज्जत के साथ मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, उसके हक में दुआए मगफरत की जाएगी। अब आप देखें कि जायज नहीं है कि जिना करने वाला जिसको इतनी सख्त सजा दी गई, अब जब उसको रजम कर दिया गया, अब उसके उसका जिक्र कोई इंसान बुराई से करे। जैसे हजरत मुआज़ बिन मालिक असलमी जब रजम की सजा से फौत हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी खैर से याद किया और खुद उसकी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इसे बुखारी ने रवायत किया है। और मुआज़ बिन मालिक के हक में कहा कि दुआए मगफिरत करो, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर एक पूरी उम्मत पर तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए काफी हो। बीबी गामिदिया जब रजम से मर गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने उनका जिक्र बुराई से किया तो आपने फरमाया, खालिद अपनी जबान रोको, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इसने ऐसी तौबा की थी, अगर जालिमाना महसूल वसूल करने वाला भी वो तौबा करता तो बख्श दिया जाता। इसी तरह अबू दाऊद की रवायत है, रावी है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के, मायस के वाक़े के बाद एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि दो सहाबी मायस का जिक्र बुराई से कर रहे हैं। चंद कदम आगे जाकर एक गधे की लाश पड़ी नजर आई, हुजूर ठहर गए और इन दोनों आदमियों से कहा कि आप हजरात इनमें से कुछ खाइए। उन्होंने अर्ज किया, या नबी इन्हें कौन खा सकता है, एक गधे की सड़ी हुई लाश को कौन खा सकता है। आपने फरमाया, अपने भाई की आबरू से जो कुछ आप अभी खा रहे थे वो इस खाने की बनिस्बत बदतर चीज थी। इमाम मुस्लिम की रिवायत है, इमरान बिन हुसैन कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गामिदिया की नमाज जिनाजा के मौके पर कहा, या रसूल अल्लाह क्या अब इस जानिया की नमाज जिनाजा पढ़ी जाएगी। आपने फरमाया, इसने वो तौबा की है कि अगर तमाम अहले मदीना पर तकसीम कर दी जाए तो सबके लिए काफी हो। بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو شراب نوشی کے جرم میں سزا دی جا رہی تھی، کسی کی زبان سے نکلا اللہ تجھے رسوا کرے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ یوں کہو اللہ اسے معاف کر دے، خدایا اس پر رحم کر۔ تو پیاری بہنوں آپ دیکھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ کتنی رحمت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو ہم بھی معاف کر دیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اگر کسی کو اس کی غلطی پر یعنی سزا مل جاتی ہے، اور ویسے بھی اسلامی حکومت کا کام ہے کہ حد قائم کرے، فرد کا تو ہے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی غلطی کا پتہ بھی چل جاتا ہے، کسی کے گناہ کی کا سمجھ میں آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اس نے کوئی گناہ کیا ہے، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ جو ہے اس کو باعزت کریں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسے برا سمجھیں، کیونکہ ڈاکٹر کبھی بھی مریض سے نفرت نہیں کرتا، وہ مرض سے نفرت کرتا ہے، اور دائی بھی کبھی بھی جو ہے وہ افراد سے نفرت نہیں کرتا، وہ ان کے گناہوں سے کرتا ہے، اور وہ پھر کیا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو میں گناہوں کی دلدل سے نکالوں، تو انہیں وہ امید دلاتا ہے کہ تم توبہ کر لو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ بڑا پیار کرنے والا ہے، تو اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کا احساس بیلنس طور پر اس کے سامنے رکھتا ہے تاکہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون، را میم یا، ویسے اس کے معنی تیر مارنا، پتھر پھینکنا، لیکن کسی پر تہمت لگانا اور بہتان لگانے کے مفہوم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگاتے ہیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی، یہاں پہ غافل سے مراد ہے بھولی بھالی، جیسے وہ عورت لونڈی جو تھی وہ آٹا گوند کر رکھ جاتی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ اتنی بھولی بھالی تھی کہ وہ سو جاتی تھی اور بکری آ کر ان کا آٹا جو تھی وہ کھا جاتی تھی، یعنی معصوم بھولے بھالے۔ تو الغافلاتی، بے خبر، سیدھے سادے، جن کے دل پاک ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ بد چلنی کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو پاک دامن، بے خبر، سیدھی سادی، جو شریف عورتیں ہیں، المؤمناتی، تیسری صفت ہے مومن عورتیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، تو زنا کے الزام لگانے کے لیے قذف کا لفظ استعمال کیا جائے گا، ان پر قذف لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جو موبقات میں سے ہے۔ موبقات کا مطلب ہوتا ہے تباہ کرنے والے گناہ، اور یعنی یہ تہمت لگانا یہ ایسا گناہ ہے جو کہ تباہ کرنے والا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، 7 کبیرہ گناہوں میں سے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پاک دامن عورت پر، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی پر الزام نہیں لگانا، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں نہیں سوچنی، بلکہ حسن ظن رکھنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے۔ اور عام طور پہ ویسے مرد ان چیزوں میں اتنا نہیں ہوتے، ان باتوں میں، جتنا عورتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال مرد ہوں یا عورت، دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں پر جو ہے وہ الزام نہ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور جب آخرت کا دن ہوگا اور لوگوں وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، یوم تشہد علیہم السناتہم، جبکہ ان کی अपनी जबाने जो है इनके खिलाफ गवाही देंगी, अलेहिम इनके खिलाफ तशदु गवाही देंगी। लिसान वाहिद है और अलसिना इसकी जमा है। व ऐदीहिम और इनके अपने हाथ, व अर्जुलहुम और इनके अपने पांव, बिमा कानू या अमलून जो कुछ वो दुनिया में अमल किया करते थे। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि इंसान के हाथ और पांव और इंसान की जबानें जो हैं कयामत के दिन उनके खिलाफ गवाही देंगी। इसके क्या मानी है? हदीस में आता है कि कयामत के दिन जो गुनाहगार अपने गुनाह का इतराफ कर लेगा तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे और महशर के मजमाए आम की नजरों से उसके गुनाह को छुपा देंगे। और जो वहां भी इनकार करेगा और कहेगा मैंने तो ये काम किया ही नहीं और निगरान फरिश्तों ने गलत मेरे नामा माल में लिख दिया, तो उस वक्त उनके मुंह बंद कर दिए जाएंगे और हाथ पांव से गवाही ली जाएगी और वो बोलेंगे, हाथ और पांव को जबान दे दी जाएगी और वो गवाही देंगे। अल्लाह ताला कहेंगे अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम कि आज हम तुम्हारे मुंहों पर मोहर लगा देंगे। तो क्या करेंगे? उनकी जबाने बोलने लगेंगी। उस वक्त जो है वो जबान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज दुनिया में जिसका दिल चाहता है झूठ बोलता है, जिसका दिल चाहता है सच बोलता है। इंसान के इख्तियार में है जबान, आंख भी इंसान के इख्तियार में, चाहे तो अच्छी चीज देखे चाहे तो गलत चीज देखे, लेकिन वहां पे जो है ये जो इख्तियार है खत्म कर दिया जाएगा और जबाने और हाथ और पांव जो है वही बोलेंगे जो कि सच होगा। और आप देखने बाज़ों का तो ऐसा होता है ना कि जो है वो बच्चा आपके खिलाफ झूठ बोल देता है, यानी आप झूठ बोलते हैं बच्चा आपके खिलाफ सच बोल देता है। आप कह देते हैं बच्चे से कि बता दो फोन पर कि मैं जो है वो घर पे नहीं हूं, मैं सो रही हूँ, तो बच्चा कहते हैं अम्मी कह रही है कि मैं सो रही हूँ। तो क्या हुआ? तो यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि इंसान की जबान और हाथ पांव से इंसान जो कुछ करता है वो अल्लाह की नजरों से जो है वो छुपावा नहीं है। और इंसान उस दिन अल्लाह ताला किन से गवाही लेगा? इंसान के जिस्म के अज़ा से, कि इन अज़ा ने क्या क्या शर किया था, क्या क्या गुनाह किए थे। यौमाज़िन يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उस दिन यूवफीहिम पूरा पूरा देगा इनको अल्लाह, अल्लाह तो वफा करना पूरा पूरा देना। उस दिन अल्लाह पूरा पूरा देगा दीनहुम इनका बदला। याद रखें ये दीन जो है ये डे ऑफ जजमेंट को भी कहते हैं और कयामत का दिन जो है वो बदले का दिन है। दीन रिलीजन को भी कहते हैं। तो यहां पर जो है अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उस दिन अल्लाह पूरा पूरा बदला देगा। दीनहुमुल हक, इनका बदला हक, ठीक। तो अल्लाह जो उनको उस दिन जजा देगा, जो अल्लाह इनसे वफा करेगा, दीनहुम इनका बदला अल हक, सच्चा बिल्कुल ठीक बदला देगा। वयालमूना अन्नल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, और उस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह ही हक है अल मुबीन, हक को जाहिर करने वाला, कि अल्लाह ही हक को सच करके दिखाने वाला है। तो लोगों को उस दिन जो है ये बात पता चल जाएगी। तो इससे भी फिर क्या बात पता चलती है कि कयामत का दिन जो है वो हक होगा। और दुनिया में बहुत से लोगों पर ज्यादती करते हैं, उन पे इल्जाम लगाते हैं, अपने आप को बरी कर लेते हैं, नाहक दूसरे लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, लेकिन कयामत का दिन जो है वो ऐसा दिन होगा कि अल्लाह ठीक ठीक फैसला करेगा, हर बात की हकीकत को खोल देगा। कि किसने जो है वो क्या किया था। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात व तय्यिबातु लित्तय्यिबीना व तय्यिबूना लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून, इनका दामन पाक है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़े करीम। अब आप देखें कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उसूली बात समझाई है, उसूली बात कि खबीसों का जोड़ खबीसों से लगता है और पाकीज़ा लोग जो हैं वो पाकीज़ा लोगों से मुनासबत रखते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना, अज़ानी ला यनकहू इल्ला ज़ानिया, तो ये उसी मजमून की मिलती जुलती आयत है। तो यहाँ पे खबीसात और खबीसून जो कहा गया है ये जानी मर्द और औरत को कहा गया है, तय्यबात और तय्यबून जो कहा गया है ये पाक दामन औरत और मर्द को कहा गया है। इसके दूसरे माने ये हैं कि नापाक बातें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक बातों के लिए हैं, और पाकीज़ा बातें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा बातों के लिए हैं। तो नापाक बातें वही मर्द और औरत करते हैं जो कि नापाक हैं, और पाकीज़ा बातें करना पाकीज़ा मर्दों और औरतों का शेवा है। तो इस आयत में भी इशारा हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा पर लगाए गए इल्जाम की तरफ है कि जिन्होंने ये इल्जाम लगाया वो लोग नापाक हैं। उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून, और अल्लाह ताला ने कहा कि जिन पर इल्जाम लगाया गया वो लोग बरी हैं। उलाइका ये लोग बरी हैं, मुबर्रऊना बारा हमजा इसका मतलब है पाक करना, बरी कर देना, तो इनको बरी कर दिया गया। किनको? हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को, हजरत सफान रजी अल्लाह अन्हा को। मिम्मा यकूलून जो कुछ ये कहते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम है। तो इससे भी ये बात पता चल रही है कि जो है वो जैसे दुनिया में भी ऐसा होता है ना कि अल्लाह ताला जो है जो नेक लोग होते हैं उनको मिलाता है, कभी उससे हटकर भी होता है क्योंकि एक आजमाइश है। तो लेकिन आम तौर पे जो है वो नेक लोग जो होते हैं वो नेक लोगों के साथ रहना चाहते हैं, सोबते सवाले, और बुरे लोगों का जो है वो बुरे लोगों में दिल लगता है। तो आखिरत में भी जो दर्जा बंदी होगी वो इंसान के अमाल इखलाक ईमान और अकायद के मुताबिक होगी। पाकीजा पाकीजा इखलाक रखने वाले जो मर्द हैं उनको पाकीजा इखलाक वाली औरतें मिलेंगी, और जो बुरा किरदार रखने वाले मर्द हैं उन्हें बुरे किरदार की औरतें मिलेंगी। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और उनके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़े करीम है। तो वो लोग जिनके जिन पर इल्जाम लगाया गया वो नेक थे, अल्लाह ने उनको पाक कर दिया, तो आखिरत में इनके लिए मग़फ़िरत है और इज्जत की रोजी है। मुफस्सरीन कहते हैं इससे मुराद जो है वो जन्नत है। तो ये था हमारा सबक, और इसमें जो है वो वाकया इफ्क और इसमें जो है वो हिस्सा लेने वाले जो हैं वो उनका अंजाम, दूसरी तरफ जो मुसलमान मुतासिर हुए तो उन्हें भी बताया गया कि उनका किरदार और उनका इखलाक कैसा होना चाहिए, और इसमें ये भी बताया गया कि सिर्फ ये नहीं कि बुराई से बचना जैसे जिना वगैरह से, बल्कि जिना वगैरह की बातें, बल्कि जिना की जो बातें हैं ना या बेहयाई की बातें वो भी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी में माहौल जो है वो बुरा होता चला जाता है। तो जबान पर अच्छी बातें होनी चाहिए, बेहुदा और लग बातें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए, हम सबसे राजी हो जाए, हम सबके गुनाहों को माफ कर दे, और हमारा ईमान, इखलाक, किरदार, अतवार, आदात, खसाइल सब के अंदर एक इनकलाब पैदा करे। हमारा नफ्स पाकीजा हो, हमारा बुलंद इखलाक हो, और हया जो है ना वो हमारा शेवा हो, और अपने साथ साथ खास तौर पर जो है वो अपनी औलाद के लिए भी दुआ करनी चाहिए। और फिर मुझे बीबी मरियम की वालदा बहुत याद आती हैं। मैं सोचती हूँ कितनी समझदार वो खातून थी और कितनी नेक खातून थी, कि उन्होंने जो कुछ उनके पेट में था, जब कहा कि ए अल्लाह मैं इसे जो है वो आपकी नजर करती हूँ, तो क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि रब्बे इन्नी नजर तू लका माफी बतनी मुहर्ररन फतकबल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब बेटी पैदा हो गई तो फिर ये भी कहा था कि वा इन्नी अईजुहा बिका बस जुर्रियतहा मिन शैतानिर रजीम, कि मैं इसे और इसकी औलाद को शैताने मर्दूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो अपनी फिक्र भी करनी है, अपनी औलाद की भी करनी है, और फिर औलाद की नस्लों की फिक्र करनी है, इसके लिए दुआ करनी है। तो कुरान को पढ़िए, पढ़ते रहिए, यहाँ तक कि जो है वो मौत का वक्त आ जाए। सारी जिंदगी कुरान, हदीस, सीरत का हमें तालबिल्म रहना चाहिए, सोबते सवाले जो है उसके साथ रहना चाहिए, कुरान के साथ जुड़ा रहना चाहिए, और खुद कुरान पढ़ेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, और दादी बनकर, नानी बनकर, और आगे पोतियां, पोते, नवासे, नवासियां, और आगे जनरेशन, और जैसे बहुत सी बूढ़ी दादी, नानी, सासे वगैरह, अक्सर घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, मसाइल बहुत होते हैं, क्योंकि फारिग हैं, क्या करें। तो अब क्या है कि या तो अगर बहू फारिग है तो लड़ाई झगड़ा, और सास फारिग है तो। मैं ये समझती हूँ कि हमें रूटीन का जो काम है, यानी मैं ये समझती हूँ कि हमें रूटीन का काम करने के बाद, यानी खाना पकाना, सफाई, जो भी हमें हमारा फर्ज बनता है, उसके बाद जो है ना हमें तर्जुमे से आता है तो कुरान तर्जुमे से पढ़ाएं, नाजरा आता है तो दूसरों को नाजरा पढ़ाएं, और एक लेवल आता है तो दूसरे लेवल पर खुद पढ़ें, और जो लेवल पढ़ लिया है वो दूसरों को पढ़ाना शुरू करें। और अगर आप पढ़ाएंगी अगर आप पढ़ाएंगी, अगर मैं पढ़ाऊंगी, तो जाहिर है कि मैं कुरान के साथ काफी वक्त लगाऊंगी ना, तो आप भी लगाएंगी। तो जब कुरान से दोस्ती हो जाएगी ना सही मानों में, जैसे कि दोस्ती का हक है, आप देखेंगी कि आपकी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि कोई लड़ना बंद कर देगा, ये नहीं होगा कि अब आजमाइशें नहीं आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि अब आप जन्नत में हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी वो ऐनक बदल जाएगी जिससे आप देखती हैं, आपके सोचने के अंदाज बदल जाएंगे, मसाइल वही होंगे लेकिन आपका नुक्ता नजर बदल जाएगा, आपको फिर मसला मसला लगेगा नहीं। अल्लाह आपको एक तमानियत कल्ब देगा, अल्लाह आपको एक सुकून देगा, आपको फिर ये बाकी सारे मसाइल, दुनिया के छोटे छोटे मसाइल लगेंगे, फिर आप उससे बड़े मसले की तरफ रजू करेंगी, और वो मसला क्या है? वो मसला है अल्लाह की जन्नत और अल्लाह की रजा, लहुम मगफिरतुम व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।